और राज्य भी अच्छा चल रहा है और काम के रूप में मेरे ये पुत्र दोनों जा ही रहे हैं। अब मैं भगवान के जो छवि है उस छवि को अपने हृदय में धारण करके यही स्मरण कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ हम तपस्विनियों की सेवा कर रही हूँ, इस सेवा से हमें हमारा सब कुछ सिद्ध हो जाएगा और भगवान का पुण्य भी बढ़ेगा। फिर लक्ष्मण जी संदेश लेकर भगवती का और दोनों बालकों को लेकर राम के दरबार में जाते हैं। राम जी का दरबार लगा हुआ है, वहां दोनों ही बालक रामायण का गान करते हैं और रामायण के गान से सबका मंत्र मुग्ध हो जाता है और सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सबने ये कहा कि चाहे जो भी हो सीता जी को बुलाया जाए, क्योंकि निश्चित ही उनका पातिव्रत्य धर्म जबरदस्त है, जिसके चलते ये बालक इतने तेजस्वी हुए हैं। क्योंकि माता पिता और गुरु का यदि यश कर्तव्य अच्छा होता है तभी उसके यहाँ सुंदर पुत्रों का जन्म होता है, तेजस्वी पुत्रों का जन्म होता है। और शिष्यों का क्या पूछना है, माता के तेजस्विता के ऊपर, माता के आचरण के ऊपर पुत्र का गुण होता है। शिष्या यदुत्कर समवाप्नुवंती प्रभावये वै स गुरो रमोघः जातः प्रतापो धत कौरवाणाम कृष्णो पदिष्टे न यजो विजेता। जो माता शिष्ट होती है तो उसका पुत्र भी शिष्ट होता है, माता तेजस्विनी होती है उसका पुत्र तेजस्वी होता है। तो लव और कुश के रामायण गान से माता की तेजस्विता का समाचार मिलता है कि माता तेजस्विनी है, ब्रह्मचर्य परायणा है और पतिव्रत में रत रहने वाली है, इसलिए सारे नगर के लोग भगवान रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि सीता जी को बुलाया जाए। सीता जी के पास अपना संदेश सुनाते हैं, लेकिन सीता जी भी सामान्य नहीं है, जगत जननी है। जगत जननी होने से एक पत्नी अपने पति को क्या निवेदित कर रही है, ये बड़े मार्मिक वचन है। कहती है कि मैं धर्म अर्थ और काम से शून्य हूँ, मेरे से महाराज का कौन सा कार्य सिद्ध होने वाला है जो आप मुझे ले चल रहे हो। मेरी भक्ति यहीं से महाराज के प्रति है, क्योंकि स्वयंवर के समय में जो मैंने उनका रूप देखा था उसी रूप से मैं उनके प्रति आकृष्ट हूँ और हमेशा मैं उनका ध्यान करते रहती हूँ। उनके ध्यान से मैं एक भी क्षण विचलित नहीं होती हूँ, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति का ध्यान ही सब कुछ है, ऐसा कहती है। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि नहीं, आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रभु की आज्ञा है। पतिव्रता स्त्रियों को पत्नी का पत्नी को पतिव्रता स्त्री को अपने पति का आज्ञा ही सर्वस्व होता है। और फिर आपने तो जंगल आते समय भी उनके चरित्र का वर्णन और आपका गान सब हुआ करता है वहां, इसलिए आपको वहां चलना ही होगा। महाराज, एक देवर लक्ष्मण जैसा जिसको लक्ष्य के लिए भेजा गया है वह अपने लक्ष्य से कैसे च्युत होता है, कभी नहीं। वह सीता जी को रथ पर बैठा करके लेकर चलते हैं और पहुंच जाते हैं आश्रम में, भगवान रामचंद्र के पास पहुंचते हैं। वहां सीता जी जाती हैं, उनका स्वागत होता है। इतने पर ही ऋषि और महर्षियों के बीच जो संवाद चल रहा है, उस संवाद के बीच में चर्चा हो रही है। शेष जी कथा कह रहे हैं कि महाराज एक समय की बात है, वाल्मीकि जी महान वन के भीतर गए जहां ताल तमाल नाना प्रकार के वृक्ष शोभा पा रहे थे, कोयल की मीठी मीठी बोलियां गुंजार कर रही थी। वन प्रदेश इतना रमणीय था, वहां मनोहर पक्षी थे, वो बसेरा लिए हुए थे और अचानक ये जो बालक आपको राम कथा सुना रहे हैं वह राम कथा सामान्य नहीं है। महर्षि स्नान करने गए थे, उसी समय में एक क्रौंच पक्षी, पति पत्नी जुगल थे, एक साथ क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय में एक आकर के व्याध ने तीर मारा। तीर मारने से एक पक्षी का वहां निधन होता है और निधन होते ही महर्षि के मन से जो शोक है वह श्लोक बन करके निकलता है कि यद क्रौंच मिथुना देक अवधि काम मोहितम। अरे व्याधा तू कैसा है कि रति कीड़ा के समय में, भोजन के समय में, शयन के समय में एक दूसरे का हरण करने वाला वह हत्यारा कहलाता है, निरपराध को मारना दोष है। तो छंदोबद्ध जो श्लोक निकला महर्षि का वह शोक था उनके हृदय का, शोक श्लोकत्वम आगतम, जो शोक था वह श्लोक बन गया। मानिषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमा शाश्वती समा यत्किंच यत्क्रौंच अवधना मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। क्रौंच पक्षी के मिथुन से जो है उनको उन्होंने कहा कि अवधि काम मोहितम, अपने कामना से मोहित हो करके और इनका वध नहीं करो, ऐसा लुंगलकार का प्रयोग है। ऐसा जब श्लोक बना उस समय में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, कहा मुनीश्वर आप में वो क्षमता है कि आप चाहें तो बहुत ही अच्छे काव्य ग्रंथ की रचना कर सकते हैं, क्योंकि सरस्वती आपके जिह्वा पर प्रकट हो गई है, यह सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ऐसा किसी किसी को होता है कि जिसके जिह्वा पर सरस्वती प्रकट हो जाए, क्योंकि कहा कि यह कम पुण्य का बात नहीं है कि जिसके मुंह पर सरस्वती हो और वाणी श्लेष युक्त हो। वाणी जब दो अर्थ वाली निकलती है ना, एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, श्लेष मतलब सटा हुआ, तो एक शब्द के दो अर्थ हो, घर में श्लेष हो पत्नी का और मुख में वाणी का श्लेष हो, भवन्ति कस्यचित् पुण्यैः मुखे वाचो गृहे स्त्रियः, मुख में श्लेष वाणी और घर में स्त्री का संबंध, ये दोनों ही किसी न किसी पुण्य के फल है, अन्यथा होते नहीं है। तो आपकी जो वाणी है वह काव्यमयी वाणी है और काव्य का चमत्कार तो ऐसा है कि जिसके हृदय में लग जाए वह घाव कर दे, नहीं तो उस कवि का कवित्व जो है वह आदर को नहीं प्राप्त करता है। कैसे? अतो अप्रगल्भा पदन्यासे जननी रागहे तव भवन्ति बहुलालापा कवयो बालकाइव। कहते हैं ना कि कवि पग रखता है उसको पद कहते हैं और बालक भी पग रखता है उसको पद कहते हैं, तो दोनों ही पद रखते हैं, शब्द को पद कहते